हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 11 श्लोक संख्या 27 से प्रारंभ करेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। आराध्यो भगवान् प्रजेशतन तत्ताम वृंदावनम रम्या का चिदुपासना व्रजवधु वर्गेनया कल्पिता श्रीमत् भागवतं प्रमाणमलं प्रेम पुमर्तो महा श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो न भर नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती युत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्टिके पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। तीसरा स्कंद अध्याय 11 जिसका शीर्षक है परमाणु से काल की गणना। तो कल हमने ये सीखा कि किस तरह से परमाणु से काल की गणना की जाती है और उसके बाद किस तरह से दिन क्षण महीने साल और युग बनते हैं। उसके बाद ब्रह्मा की आयु के विषय में पढ़ा। आज हम ये देखेंगे कि जब ये समय समाप्त होता है और भगवान को इस संसार में प्रलय करना होता है तो क्या होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर मैत्रेय मुनि विदुर जी को संसार के आरंभ से लेकर अंत तक सब घटनाओं के विषय में बताएंगे। तो इस मनवंत्र के बदलने के साथ क्या होता है और किस तरह से भगवान प्रत्येक मनवंत्र में अवतार लेते हैं, क्योंकि जीव जो है वो चाहे कितना ही शक्तिमान क्यों ना हो, कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, लेकिन उसे अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए भगवान की कृपा की आवश्यकता होती है। जीव स्वतंत्रता से कभी भी ना आनंदित हो सकता है ना सफल हो सकता है। इसलिए हम हर कार्य के लिए भगवान की कृपा पर निर्भर होते हैं। मैत्रेय मुनि कहते हैं मन्वंतरेषु भगवान् बिभ्रत्सत्वं स्वमूर्तिभिः मन्वादि बिरद बिरद इदं विश्वं अवद्युतित पौरुषम्। मन्वंतरेषु भगवान, मन्वंतरेषु मतलब प्रत्येक मन्वंतर में, यानी जब हर एक मन्वंतर होता है, मन्वंतर क्या होता है, काल की एक अवधि है जिसमें 71 चतुर्युगी होते हैं, तो उसके जब परिवर्तन होता है तो भगवान, भगवान मतलब साक्षात भगवान श्री कृष्ण विव्रत यानी प्रकट करते हैं सत्वम अपनी अंतरंगा शक्ति, स्वमूर्ति अपने विभिन्न अवतारों के द्वारा। अब जब मन्वंतर का प्रारंभ होता है तो भगवान अपनी शक्ति से वहाँ सारे मन्वंतर में हर एक कार्य को अच्छे तरीके से चलाने के लिए, धर्म की सुरक्षा करने के लिए भगवान क्या करते हैं, स्वमूर्ति भी अपने विभिन्न अवतारों को प्रकट करते हैं, और मनु आदि भी, मनुओं के रूप में भी भगवान स्वयं को ही विस्तारित करते हैं। इदम विश्वम मनु आदि भीर इदम, इदम मना यह विश्वम यानी ब्रह्मांड, अवति यानी पालन करता है, उदति उदित अर्थात खोजी, पौरुष अर्थात दैव शक्तियां। अनुवाद देखिए, प्रत्येक मनु के बदलने के साथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विभिन्न अवतारों के रूप में, यथा मनु इत्यादि के रूप में अपनी अंतरंगा शक्ति प्रकट करते हैं, अवतीर्ण होते हैं, इस तरह प्राप्त हुई शक्ति से ब्रह्मांड का पालन होता है। बहुत महत्वपूर्ण बात बताई जा रही है यहाँ पर कि ब्रह्मांड के पालन के लिए पूरा का पूरा कार्यभार जो है वो भगवान की कृपा से होता है। भगवान पहले तो अपनी शक्ति से ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं, भगवान की सांस से ब्रह्मांड का निर्माण होता है, फिर गर्भोदशाय विष्णु के उदर से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, और फिर भगवान जो है उस ब्रह्मांड को चलाने के लिए पहले स्वयं के अवतार अवतार के स्वरूप में प्रकट करते हैं, और फिर मनु आदि जितने भी शासक हैं उनको भी भगवान प्रकट करते हैं, और इस तरह से जो भगवान की शक्ति होती है उसी से इस ब्रह्मांड का पालन होता है और संरक्षण होता है। तो हम टोटली हर एक कार्य के लिए भगवान की कृपा पर निर्भर हैं, और जब तक जीव आनंदित हो नहीं सकता जब तक कि वो भगवान की शरणागति को स्वीकार नहीं करता। आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, तमो मात्राम उपादाय प्रति संरुद्धवि क्रम काले नानु कथाशेष आस्ते तूष्णीं दिनात्यये। तमो मात्रे, तमो मतलब तमोगुण या रात का अंधकार, तमोगुण मतलब जब अंधकार हो जाता है तब मात्राम, मात्राम मतलब अंश मात्र, बहुत ही थोड़ा सा निगरणीय जब तमोगुण उसके अंदर सम्मिलित होता है, उपादाय मतलब स्वीकार करके, प्रति संवृद्ध विक्रम, प्रति संवृद्ध मतलब अभिव्यक्ति की सारी शक्तियों को रोक करके, अब जब जैसे ही रात्रि ब्रह्मा की होती है तो फिर भगवान सारी जो सृजन की शक्तियां उनको रोक देते हैं, कालेन अर्थात नित्य काल के द्वारा अनुगत विलीन अशेष असंख्य जीव कालेनानुगताशेष आस्ते तूष्णीम दिनात्यये। सारे जितने भी जीव हैं वो विलीन करते हैं, आस्ते मना रहता है, तूष्णीम मतलब मौन, दिन अत्यये दिन के अंत होने पर, दिन जब अंत होता है और रात्रि प्रारंभ होती है ब्रह्मा की तो क्या होता है। अनुवाद देखिए, दिन के अंत होने पर तमोगुण के निगरणी अंश के अंतर्गत ब्रह्मांड की शक्तिशाली अभिव्यक्ति रात के अंधेरे में लीन हो जाती है, मतलब पूरा जो ब्रह्मांड सारा उसका कार्यभार जब तमोगुण का थोड़ा सा मिश्रण होने के बाद ब्रह्मा जी की रात्रि होती है, तो वो सब जो भी कुछ संसार है वो रात के अंधेरे में लीन हो जाता है। और काले नानुगता शेष आस्ते तुष्णिम दिनात्यये, यानी नित्य काल के प्रभाव से असंख्य जीव उस प्रलय में लीन रहते हैं और हर वस्तु मौन हो जाती है। उस समय जब रात्रि होने वाली होती है, तब जितने भी जीव हैं, चर और अचर जो कुछ भी है, वो नित्य काल के अंधेरे में नित्य काल के प्रभाव से सब प्रलय के अंदर लीन हो जाते हैं और हर तरफ केवल शांति ही शांति होती है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, यह श्लोक ब्रह्मा की रात्रि की व्याख्या है, जो प्रकृति के तमोगुण के क्षुद्र अंश के संपर्क में काल के प्रभाव के का परिणाम है। यानी जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है तो क्या होता है, तो काल, नित्य काल जो है वो अपने आप को समेट कर प्रलय की ओर लेके जाता है और तीनों लोकों का प्रलय तमस के अवतार रुद्र द्वारा किया जाता है। 14 लोक होते हैं ना, लेकिन ब्रह्मा की जब रात्रि होती है यानी कल्प का अंत होता है, तो 3 लोकों का प्रलय होता है, जो नित्य काल के उसी अग्नि द्वारा प्रदर्शित होता है जो तीनों लोकों में प्रज्वलित होती है। फिर काल के द्वारा एक अग्नि प्रज्वलित होती है तीनों लोकों में और उसी के परिणाम से प्रलय होता है। जो यहाँ ये तीनों लोक कौन कौन से हैं, भूलोक, भूलोक तथा स्वर्गलोक। भूलोक मतलब या पृथ्वी या मृत्युलोक, भूलोक अर्थात पाताल लोक और स्व अर्थात स्वर्गलोक, इन तीनों का नाश हो जाता है और असंख्य जीव उस प्रलय में लीन होते हैं, जो परमेश्वर की शक्ति के दृश्य पर पटाक्षेप जैसा प्रतीत होती है और इस तरह हर वस्तु मौन हो जाती है। मतलब सारे जितने भी जीव हैं वो प्रलय में लीन हो जाते हैं और भगवान की शक्ति के अंदर प्रवेश हो जाते हैं और इस तरह हर एक वस्तु जो है वो शांत हो जाती है, मौन हो जाती है। अब प्रलय के विषय में मैत्रेय मुनि और भी अधिक अच्छे तरीके से बताएंगे किस तरह से होता है। वे कहते हैं, तमेवान्वपि दीयन्ते लोका भूरा दयस्त्रया निशायाम अनुवृत्ताया निर्मुक्त शशि भास्करम तमे वान वपी। तमे यानी तमोगुण, एवमना निश्चय ही, अनु मतलब पीछे, अपि दीयते मतलब दृष्टि से लुप्त हो जाते हैं। जैसे ही प्रलय होने वाला होता है तो हर एक वस्तु जो है वो लुप्त होने लगती। कहाँ पर? लोका भूरा दस्तया, लोका मतलब सारे लोक, भू आदि, भू मन भूलोक, भूअलोक और स्वलोक, यानी पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग, ये तीनों क्या हो जाते हैं, वो उस प्रलय की आने के कारण लुप्त हो जाते हैं, मतलब दिखने नहीं लगते हैं। फिर त्रय, ये तीन किस तरह से हो जाता है, निशायाम अनुवर्तायाम, निशायाम यानी रात में, अनुवृत्तायाम यानी सामान्य, निर्मुक्त यानी बिना चमक तमक के, शशि भास्कर, शशि कहते चंद्रमा को, भास्कर अर्थात सूर्य। जब रात होती है तो चंद्रमा के प्रकाश से जीव जो है ना शक्ति प्राप्त करते हैं और संसार में प्रज्वल होता है, उजाला होता है, प्रकाश होता है। जब दिन होता है तो सूर्य प्रकाश से संसार जो है वो प्रकाशमान होता है, लेकिन जब प्रलय होता है तब क्या होता है, तब सारी वस्तुएं वो लुप्त हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि यहाँ पर निर्मुक्ता शशि सूर्या, निर्मुक्ता मतलब शशि और सूर्य, चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश निर्मुक्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। क्योंकि भगवान को अब प्रलय करना होता है तो सारी वस्तुओं को लीन करने के लिए सबसे पहले वो सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश समाप्त कर देते हैं। अनुवाद देखिए, जब ब्रह्मा की राज शुरू होती है तो तीनों लोक दृष्टिगोचर नहीं होते और सूर्य तथा चंद्रमा तेजवीन हो जाते हैं, जिस तरह के सामान्य रात के समय होता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, अनुवाद देखिए, जब ब्रह्मा की राज शुरू होती है तो तीनों लोक दृष्टिगोचर नहीं होते और सूर्य तथा चंद्रमा तेज विहीन हो जाते हैं, जिस तरह के सामान्य रात के समय होता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, ऐसा समझा जाता है कि सूर्य तथा चंद्रमा की चमक तीनों लोकों की परिधि से अदृश्य हो जाती है, किंतु स्वयं सूर्य तथा चंद्रमा लुप्त नहीं होते। मतलब सूर्य और चंद्रमा तो होते लेकिन उनकी चमक खत्म हो जाती है। वे ब्रह्मांड के शेष भाग में जो तीनों लोकों के मंडल से परे हैं प्रकट होते हैं। प्रलयग्रस्त भाग सूर्य की किरणों या चंद्रमा की चमक के बिना रह जाते हैं। सर्वत्र अंधकार रहता है और जल भरा रहता है और ना रुकने वाली वायु चलती है, जैसा कि अगले श्लोकों में बताया जाएगा। अब सबसे पहले ये बताया जा रहा है कि उस समय जब प्रलय हो रहा होता है तब सारी वस्तुएं हर तरफ शांत होने लगता है और भगवान जो है वो नित्य काल के द्वारा इस ब्रह्मांड की जो अभिव्यक्तियां हैं उनको शांत कर देते हैं। मतलब उनकी जो मूवमेंट है, क्रियाएं हैं, वो सब समाप्त हो जाते हैं और सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश खींच लेते हैं, जिसके कारण हर जगह पर केवल अंधकार ही अंधकार होता है, कुछ भी दिखने नहीं लगता। आगे कहते हैं, और जो तीनों लोक हैं, भूलोक, भूलोक और स्वर्गलोक, वो जलने लगते हैं। ये अग्नि कहाँ से आती है वो अगले श्लोक में बताते हैं। त्रिलोक्याम दह्यमानायाम शक्त्या संकर्षणाग्निना यान्तूष्माणा महर्लोकात् जनम ऋग्वादयोर्दिता। त्रिलोक्याम यानी तीनों लोक, जब तीन लोक भूलोक, भूलोक और स्वर्गलोक, दह्यमानायाम मतलब वो जलने लगते हैं, प्रज्वलित हो जाते हैं। किसके कारण? शक्तिया संकर्षणाग्निने, शक्तिया मतलब शक्ति के द्वारा, संकर्षणा अर्थात संकर्षण या जो शेष के मुख से जो अग्नि निकल रही है, अग्निना यानी अग्नि से, यान्ति मतलब जाते हैं, उष्मणाम यानी ताप से तपे हुए। अब जब शेषनाग के या संकर्षण भगवान के मुख से जो अग्नि निकल रही है उसके कारण तीन लोक कौन कौन से, भूलोक, भूलोक और स्वर्गलोक जल रहे होते हैं। लेकिन उसके बाद जो महर लोक है, या बता यान्त्युष्मणा महर लोकाज, उसके बाद जो महर लोक है वहां तक उसकी ताप आ रही होती है, जहां पर कौन रहते हैं, जनम भृग्वादयोर्दिता, वहां पर भृगु आदि जो ऋषि हैं, आदि इदिता उर्दिता मतलब वो सब पीड़ित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर भी अग्नि लग रही होती है। जैसे अगर किसी बिल्डिंग में अग्नि लग रही होती है, थर्ड फ्लोर तक अगर अग्नि आ रही है तो फोर्थ फ्लोर वाले को भी तो अग्नि की ताप आएगी ना, तो उसी तरह से ये ब्रह्मांड भी है। तो ब्रह्मांड के नीचे के तीन लोग को भगवान को प्रलय करना होता है और भृगु आदि जो हैं उन तक क्या होता है, यान्त युष्मणा, उष्मणा उसकी बहुत ज्यादा अग्नि की ताप आ रही होती है। अनुवाद देखिए, संकर्षण के मुख से निकलने वाली अग्नि के कारण प्रलय होता है और इस तरह भृगु आदि इत्यादि महर्षि तथा महरलोक के अन्य निवासी उस प्रज्वलित अग्नि की ऊष्मा से जो नीचे की तीनों लोकों में लगी रहती है व्याकुल होकर जनलोक को चले जाते हैं। और उसके बाद जब हर जगह पे सब कुछ जल जाता है प्रलय की अग्नि में, फिर क्या होता है? मैत्रेय मुनि कहते हैं, तावत्री भुवनम सत्यः कल्पान्तैदित सिंधव प्लावयन्त्युत्कटाटोप चंडवातीरितोर्मयः तावत् त्रिभुवनम। तावत् मना तब, त्रिभुवनम मतलब तीनों लोक, सद्यः उसके तुरंत बाद, जैसे ही सारी अग्नि से जल गए उसके तुरंत बाद क्या होता है? कल्पान्तैदित सिंधव, कल्प अंत यानी प्रलय के प्रारंभ में जब कल्प का अंत होता है, एदित उमंड कर क्या? सिंधव, जितने भी समुद्र हैं, कहा जाता है 7 समुद्र हैं और वो सारे समुद्र क्या हो जाते हैं? प्लावयंती यानी उनके अंदर बाढ़ आ जाती है, वो सब उमड़ पड़ते हैं बाढ़ से जलम, और सारे समुद्र के अंदर जब बाढ़ आ जाती है तो हर जगह पर जलमय हो जाता है। उत्कट अर्थात भीषण, बहुत ही भयंकर बाढ़ आने लगती है। आटोप यानी क्षोभ, चंड, चंड माना उदंड, वात मतलब हवाएं, और तीज तीज हवाएं, तूफानी हवाएं आने लगती हैं। सारे समुद्र में से जल जो है वो बाढ़ आने के कारण सब जगहों पे जलमय हो जाता है, तेज तेज हवाएं लगती हैं। चंडवाय वा तेरितो मयम, इरतो मतलब बहाई गई, उरुमया यानी लहरें, उधर से तेज तेज हवाएं आ रही होती हैं, उधर से समुद्र जो है वो सब भर जाते हैं, प्रचंड जल जो है वो हर जगह पर फैल जाता है और हर जगह पर केवल जल ही जल हो जाता है, क्योंकि सब प्राणी तो शांत हो गए थे, अंधकार हो गया था। और उसके बाद अनुवाद देखिए, प्रलय के प्रारंभ में सारे समुद्र उमर आते हैं और भीषण हवाएं उग्र रूप से चलने लगती हैं, उस तरह समुद्र की लहरें भयावह बन जाती हैं और देखते ही देखते तीनों लोग जलमग्न हो जाते हैं। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, कहा जाता है कि संकर्षण के मुख से निकलने वाली प्रज्वलित अग्नि देवताओं के 100 वर्ष तक या मनुष्यों के 36,000 वर्षों तक धधकती रहती है। इसके पश्चात अगले 36,000 वर्ष तक मूसलाधार बारिश, वर्षा के साथ साथ प्रचंड वायु तथा लहरें उठती हैं और समुद्र तथा महासागर उमड़ने लगते हैं। 72,000 वर्षों के ये घात प्रतिघात तीनों लोकों के आंशिक प्रलय के आरंभ हैं। लोकों के इन प्रलयों को भूलकर लोग सभ्यता की भौतिक प्रगति में अपने को सुखी मानते हैं, यही माया कहलाती है, अर्थात वह जो नहीं है। श्रीला प्रभुपाद की जय। तो यहाँ श्रीला प्रभुपाद जी समय के विषय में बताते हैं कि इस धरती में जब 36,000 वर्ष तक जो है वो अग्नि धधकती रहती है, हम सोच सकते हैं किसी भी जगह पर यदि 1 घंटा 2 घंटा भी कोई अग्नि जलने लगती है तो कितना व्याकुल हो जाते हैं वहाँ के प्राणी। और हमारे इस भूलोक में स्वर्ग लोक में 36,000 तक शंकरशन के मुख से अग्नि धधकती हुई सबको अपनी तेज चिंगारियों में झुलसाती रहेगी। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद 36,000 वर्षों तक तेज हवाएं, प्रचंड वायु और इतनी तेज वर्षा 36,000 वर्षों तक। हम कभी सोच सकते हैं कि अगर 1 हफ्ता या 20 दिन या 4 मास भी कहाँ पर कहाँ कहाँ पर बारिश होती है वो भी कैसे होती है, थोड़ी देर हुई फिर नहीं हुई, थोड़ी देर हुई तो हम कहते हैं 3 दिन से बारिश चल रही है, 4 महीने से बारिश चल रही, लेकिन ये कैसी बारिश होगी? एक एक बूंद जो है वो इतनी बड़ी बड़ी होगी कि धरती पे गिरे तो धरती में खड्डा हो जाए, और इतनी तेज वर्षा होती है, हवाएं चल रही होती हैं, तो इस तरह से 72,000 ईयर्स के कंटिन्यूस घात प्रतिघात से तीनों लोक का आंशिक प्रलय होता है। अभी ये बहुत छोटा प्रलय है और हम इस इतने खतरनाक प्रलय के बारे में कभी कुछ नहीं सोचते कि कितना हम यहाँ पर सब जितना भी कमाएंगे जो भी करेंगे वो सब केवल और केवल यहीं पर राख का ढेर बनने वाला है। लोगों के इन प्रलयों को कोई नहीं याद करता और हम क्या सोचते हैं एडवांसमेंट के बारे में कि भौतिक प्रगति कैसे हो, हम समझते हैं कि हम ये एडवांसमेंट कर लेंगे, ये वस्तुएं प्राप्त कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे। ये माया है, सब कुछ यहीं छोड़ के जाएंगे। हम अपने शरीर को भी साथ नहीं लेके जा सकते हैं, कुछ भी, चाहे हम बार बार जन्म लेते भी हैं, चलो ठीक है, किसी भी लोक में अगर हम जन्म ले भी लेते हैं तो भी क्या लाभ होगा? आखिर तो प्रलय के कारण हम सब सारे जीव यूं ही नीस तो नाबूद होने वाले हैं, समाप्त होने वाले हैं, तो इसलिए हम क्यों नहीं सीरियस होकर भगवत प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी माया है जिसके कारण हम भगवान को भूलकर संसार में आनंद भोगने के प्रयास कर रहे हैं। और उसके बाद क्या होता है, मैत्रेय मुनि कहते हैं अंतः स तस्मिन् सलिला आस्तेनन्तासनो हरि योगनिद्रा निमीलाक्ष स्तूयमानो जनालये। अंतः स तस्मिन्, अंतः मना भीतर, स मना वा, तस्मिन् मना उस, सलिले मतलब जल में, क्योंकि हर जगह पे जल ही जल है, तो अब उस जल में आस्ते अनंतासनो हरि, आस्ते मतलब आ जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं, कौन? अनंत, अनंत यानी शेषनाग के आसन यानी आसन पर भगवान श्री हरि अर्थात भगवान श्री कृष्ण। फिर जो हर जगह पर जलमय हो जाता है वहां पर एक बहुत ही बड़ा अनंत का आसन होता है जहां पर श्री हरि आकर विराजमान हो जाते, लेट जाते हैं। कैसे? योग निद्रा निमीलाक्ष, योग निद्रा मतलब हमारी निद्रा और भगवान की निद्रा में बहुत अंतर है। हम जब सोते हैं तो तमोगुण की निद्रा होती है, हमें कुछ याद नहीं रहता, लेकिन भगवान की निद्रा जो होती है वो योग निद्रा होती है, यानी उन्हें सब जीवों के बारे में सब कुछ पता होता है, वो जानते हैं सब कुछ कि मुझे क्या करना है। लेकिन योग निद्रा निमीलाक्ष, निमील मतलब बंद करके, आक्ष मतलब आँखों को, योग निद्रा में अपनी आँखों को आधा बंद करते हैं और उस समय स्तूयमानो जनालय, स्तूयमानो भगवान की स्तुति करते हैं, कौन? जनालय, जन लोक के निवासी जो होते हैं उनको जनालय कहा जाता है। वो क्योंकि नीचे के 3 लोक तो जल गए और जो उसके बाद महरलोक है उनके प्राणी भी जनलोक में चले जाते हैं क्योंकि वहां पर भी ताप आ रहा होता है, फिर जनलोक के सारे प्राणी आकर भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान को स्तुति बहुत प्रसन्न करती है, इसलिए जो शुद्ध वैष्णव होते हैं वो हमेशा जो भागवतम है उनकी अच्छी अच्छी स्तुतियाँ याद करते हैं और भगवान को समर्पित करते हैं। तो यहाँ पर सारे जनलोक के प्राणी आकर भगवान की स्तुति कर रहे हैं जो भगवान शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लेटे हुए हैं। अनुवाद देखिए, परमेश्वर अर्थात भगवान हरि अपनी आंखें बंद किए हुए अनंत के आसन पर जल में लेट जाते हैं और जनलोक के निवासी हाथ जोड़कर भगवान की महिमामयी स्तुतियां करते हैं। शिला प्रभुपाद जो कहते हैं, हमें भगवान के शयन अवस्था को अपनी नींद जैसा नहीं समझना चाहिए। यहाँ पर योग निद्रा शब्द का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है, जो सूचित करता है कि भगवान की शयन अवस्था भी उनकी अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है। जब भी योग शब्द व्यवहारित किया जाता है, इसे दिव्य का द्योतक समझना चाहिए। दिव्य अवस्था में समस्त कार्यकला विद्यमान रहते हैं और उनकी महिमा का बखान भृगु जैसे महान ऋषियों की स्तुति द्वारा होता है। शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं, देखो अगर कोई व्यक्ति सोया हुआ होता है तो कोई भी आकर उनकी स्तुति तो नहीं करता है ना, सब वो सोचेंगे कि जाग जाएगा तो करेंगे। लेकिन भगवान की निद्रा हमारे जैसी सामान्य नहीं होती। भगवान योग निद्रा में भी सच है, चित है, आनंद स्वरूप है। इसीलिए सारे भृगु और जनलोक के जितने भी निवासी हैं वो आकर भगवान की स्तुतियाँ शुरू करते हैं। और आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, मैत्रेय जी आगे कहते हैं कि चाहे कोई जीव ब्रह्मा जितनी दीर्घ आयु रखता हो या एक छोटे से मच्छर की जितनी, हर एक जीव की आयु उनके समय के अनुसार 100 वर्ष की होती है। भगवान ने 100 वर्ष दिए, लेकिन कुछ भी हो हमें इतना तो याद रखना है कि आज नहीं तो कल हमको सब कुछ छोड़ के जाना है, और जहाँ जाना है वहाँ के लिए तैयारी अत्यंत ही आवश्यक है। जैसे इस भौतिक जगत में भी हम यदि अपने इस घर को छोड़कर जाना होता है तो जहाँ हम जा रहे हैं उनके हिसाब से, उस स्थिति के हिसाब से हमको तैयारी करनी होती है कि वहाँ पर मुझे इन इन चीज़ों की वस्तुओं की आवश्यकता होगी। तो बुद्धिमान वही है जो जाने से पहले पूरी तैयारी कर ले, उसी को आगे जाकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। लेकिन जो मूर्ख है उनको तो समझ में ही नहीं आता कि हमको किस तरह से तैयारी करनी है, कैसे जाना है, वहाँ पर कैसे रहना। श्रीला प्रभुपाद जी आगे बताएंगे कि जानवरों के ऊपर तो कोई आरोप नहीं लगा सकता क्योंकि उन बेचारों के पास तो बुद्धि नहीं, लेकिन यदि मनुष्य, वो भी यदि ये जानते हुए कि आज नहीं तो कल मरना है और उसके लिए कोई तैयारी नहीं करते, तो वो मनुष्य भी वैसे ही जानवरों की तरह जी रहे हैं जिन्हें कुछ पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। मैत्रेय मुनि कहते हैं, एवं विदैरहो रात्रे कालगत्योपलक्षिते अपक्षितम् एवास्यापि परमायुर्वयः शतम्। एवं विदैर, एवं मना इस प्रकार, विदय मतलब अवधि से, अह रात्रि, अह मतलब दिन, रात्रि मतलब रात के द्वारा, कालगत्योपलक्षते, कालगत्या मतलब काल की प्रगति, उपलक्षते ऐसे लक्षणों के द्वारा, यानी इस तरह से दिन और रात के साथ जैसे जैसे दिन गुजरता है, रात्रि होती है तो हमारा एक दिन समाप्त हो जाता है। इस तरह से धीरे धीरे हमारे समय को समाप्त करते हुए काल आगे बढ़ रहा है। और अपक्षितम एवास्यापि, अपक्षितम यानी घटती हुई, इव सदृश अस्य उसकी, अपि मन यद्यपि, परमायु वयः शतम्, हर एक जीव को सिर्फ 100 साल की ही आयु मिली है और दिन और रात बार बार उस आयु को प्रत्येक क्षण कम करते जाते हैं। इसलिए हम सबको तैयारी करनी चाहिए कि आज नहीं
तो कल हमारी ये पूरी आयु तो समाप्त हो जाएगी, इसलिए जहां को हमको जाना है वहां के लिए कुछ सामान इकट्ठा करें और वहां केवल हम भगवान का नाम ही लेके जाएंगे। इस संसार में हम जो कुछ भी कमाएंगे वो सब यहीं छोड़ के जाएंगे। अनुवाद देखिए, इस तरह ब्रह्मा जी समेत प्रत्येक जीव के लिए आयु की अवधि के क्षय की विधि विद्यमान होती है। विभिन्न लोकों में काल के संदर्भ में हर किसी जीव की आयु केवल 100 वर्ष तक ही होती। श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, विभिन्न जीवों के लिए विभिन्न लोकों में काल अवधि के अनुसार हर जीव 100 वर्ष तक जीवित रहता है। जीवन के ये 100 वर्ष प्रत्येक अवस्था में समान नहीं होते। 100 वर्षों की सबसे दीर्घ आयु ब्रह्मा जी की होती है और ब्रह्मा का जीवन बहुत दीर्घ होने पर भी समय आने पर समाप्त हो जाता। जैसे यहाँ पृथ्वी पर 100 साल बीतते हैं तो 100 साल का अलग माप अलग है, उसका समय अलग होता है। उसी तरह से जनलोक में अलग समय होता है, महरलोक में अलग समय, स्वर्गलोक में अलग समय होता है और सबसे बड़ा दीर्घ समय कहाँ पर होता है? ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कुछ भी हो आखिर तो समय समाप्त होना ही है। 100 वर्ष सबसे बड़ी दीर्घ आयु ब्रह्मा जी की होती है और ब्रह्मा जी का जीवन बहुत दीर्घ होने पर भी समय आने पर समाप्त हो जाता है। ब्रह्मा भी अपनी मृत्यु से भयभीत होते हैं, अतः वे भगवान की भक्ति करते हैं जिससे वे माया के पास से छुटकारा प्राप्त कर सके। ब्रह्मा भी ये नहीं सोचता मेरी आयु तो बहुत बड़ी है तो मुझे क्या जरूरत है भगवान की भक्ति करने की, अभी तो बहुत जीना है। इसलिए ब्रह्मा जी भी हमेशा भगवान की भक्ति करते रहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं हाँ, पशुओं में उत्तरदायित्व का कोई बोध नहीं होता है, किंतु मनुष्य भी जिनमें उत्तरदायित्व का बोध विकसित हो रहता है भगवान की भक्ति में लगे बिना अपना अमूल्य समय व्यर्थ खोते रहते हैं। आसन्न मृत्यु के डर से बिना मौज में रहते हैं, यह मानव समाज का पागलपन है। पागल मनुष्य का जीवन में कोई उत्तरदायित्व नहीं रहता। उसी तरह से जो मनुष्य मरने के पूर्व उत्तरदायित्व का बोध विकसित नहीं कर लेता वह उस पागल व्यक्ति के समान है जो भविष्य की किसी प्रकार की चिंता किए बिना भौतिक जीवन का आनंद लेना चाहता है। यह आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य अगले जीवन के लिए अपने को तैयार करने के लिए उत्तरदायी बने, भले ही उसकी आयु इस ब्रह्मांड की सबसे बड़े प्राणी ब्रह्मा जी जितनी ही क्यों ना हो। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा है। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि हमको सीरियस होकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि आखिर तो भगवान के पास जाना ही है। आगे मैत्रेय मुनि के ब्रह्मा जी के आयु को दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, पहले के आधा भाग पहला का और आधा भाग बाद का। तो मतलब 14 लोक है, 14 मनु होते ना, उसमें से 7 मनु 50 शुरू के 50 ईयर्स में आते हैं और 7 मनु दूसरे जो दूसरा भाग होता है दूसरे 50 ईयर्स में। तो अभी तक ब्रह्मा जी की आधी आयु समाप्त हो गई क्योंकि 7वां मनु चल रहा है, उसके बारे में बता रहे हैं। वे कहते हैं यदर्धर्मायुषस्तस्य परार्धर्म विधीयते पूर्वः परार्धोपक्रांत। यपरोध्य प्रवर्तते यदर्मायुषस्तस्य यद अर्धम यद मतलब यत जो, अर्धम मतलब आधा, आयुष्य मतलब आयु, तस्य मतलब उसका, उनकी आयु का आधा भाग, परार्धम यानी एक परार्ध, अभिधीयते यानी कहलाता है। अब उनकी आयु को दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया है तो एक आधे को क्या कहते हैं? परार्धम परार्ध कहा जाता है। पूर्व परार्धो, पूर्व यानी पहले वाला, परार्धो मतलब आदि आयु, उपक्रांतः बीत जाने पर ही, निश्चय ही, अपरा मतलब बाद वाला, अध्य यानी इस युग में, प्रवर्तते प्रारंभ करेगा। अनुवाद देखिए, ब्रह्मा जी के जीवन के 100 वर्ष दो भागों में विभक्त हैं, प्रथमार्ध तथा द्वितीयार्ध या परार्ध। ब्रह्मा के जीवन का प्रथमार्ध समाप्त हो चुका है और द्वितीयार्ध अब चल रहा है। श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इस ग्रंथ में अनेक स्थलों पर ब्रह्मा जी के जीवन की 100 वर्षों की अवधि की व्याख्या की जा चुकी है और श्रीमद् भगवद गीता 8.17 में भी इसका वर्णन हुआ है। ब्रह्मा की आयु के 50 वर्ष बीत चुके हैं और अगले 50 वर्ष अभी पूरे होने हैं, तब ब्रह्मा जी के लिए भी मृत्यु अपरिहार्य हो जाएगी। कि भले ही उनके पास समय बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनको ये याद है कि आधा जीवन बीत गया, अब आधा रह गया है और उसके बाद तो मुझे भी ब्रह्म भुवना लोका पुनरावृत्ति नो अर्जुन। आगे मैत्रेय मुनि कहते, पूर्वस्यादौ परार्धस्य ब्राह्मो नाम महानभूत कल्पो यात्रा भवत् ब्रह्मा शब्द ब्रह्मेति यम विदु। पूर्वस्य आदौ, पूर्वस्य अर्थात प्रथमार्ध के, आदौ यानी प्रारंभ में, जब पहला आधा यानी पहले के जो 7 मनु या पहले के 50 वर्ष जो ब्रह्मा जी के हैं, परस आर्धस्य, पर मतलब द्वितीय आर्ध यानी दूसरे जो 50 वर्ष हैं, ब्रह्म यानी ब्रह्मकल्प, ब्राह्म्यकल्प यानी ब्रह्मा जी का जो कल्प होता है उसका शुरू का, नाम यानी नामक, महान यानी महान, अभूत यानी प्रकट था, और कल्पो यात्रा भवत ब्रह्मा, कल्पो यानी कल्प, यात्र जहाँ, अभवत यानी प्रकट हुआ ब्रह्मा यानी ब्रह्म, शब्द ब्रह्मेति यम विदु, शब्द ब्रह्म यानी वेद, वेदों की ध्वनिया, यम यानी जिसको, विदु वे जानते हैं, मतलब जिस समय ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी उसी समय जो ब्रह्म शब्द ब्रह्म यानी वेदों की भी उत्पत्ति हुई थी। अनुवाद देखिए, ब्रह्मा के जीवन के प्रथम अर्ध के आरंभ में ब्रह्म कल्प नामक कल्प था जिसमें ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे। समय बताया जा रहा है, ब्रह्मा नामो महानभूत, ब्रह्म कल्प था और महीना कौन सा था, श्रील प्रभुपाद जी बताएंगे कि मार्च का महीना था। उस ब्रह्म कल्प में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और वेदों का जन्म भी ब्रह्मा के साथ साथ हुआ था। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं पद्म पुराण प्रभास कांड के अनुसार ब्रह्मा के 30 दिनों में कई कल्प यथा वराह कल्प तथा पितृकल्प घटित हो जाते हैं। एक महीना होता है तो उसमें वराह कल्प भी हो जाता है, पितृकल्प भी हो जाता है, ब्रह्मा जी का ब्रह्म कल्प होता है, ठीक है। तो 30 दिन का ब्रह्मा का एक मास होता है जो पूर्ण चंद्रमा से लेकर चंद्रमा के अस्त होने तक चलता है। ऐसे 12 मासों से पूरा वर्ष बनता है और 50 वर्ष से एक परार्ध को पूरा करते हैं, अर्थात ब्रह्मा की आयु के आधे के तुल्य होते हैं। मतलब 30 दिन का एक महीना और 12 महीनों का साल होता है और उसके जो 100 साल पूरे होते हैं ना ब्रह्मा जी के, तो जब 50 वर्ष हो जाते हैं ब्रह्मा जी के तो आधा हो गया, मतलब आधा समय हो गया उसका। तो ऐसे 12 मासों से पूरा वर्ष बनता है और 50 वर्ष
एक परार्ध को पूरा करते हैं यानी 6 महीने अर्थात ब्रह्मा की आयु के आधे के तुल्य होते हैं। भगवान का श्वेत वराह प्राकट्य ब्रह्मा का पहला जन्मदिन है। तो पहला जन्मदिन जब भगवान का वराह अवतार हुआ। ब्रह्मा की जन्म तिथि हिंदू ज्योतिष गणना के अनुसार मार्च मास में पड़ती है। यह कथन श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की व्याख्या से जैसे का तैसा उद्धृत हुआ है। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं ये सब विश्वनाथ चक्रवर्ती महाराज ने अपनी व्याख्या में बताया है। आगे मैत्रेय मुनि दूसरे जो कल्प है उसके विषय में बताते हैं। वे कहते हैं तस्यैव चान्ति कल्पो भूद्यं पद्मामभिश्चख्यते भूद्यं पद्म विचक्षते यद्धरे नाभिसरस आसील्लोकसरोरुहम् तस्यैव चान्ते कल्पो भूद्यं पद्म विचक्षते यद्धरेणाभिसरस आसील्लोकसरोरुहम् तस्यैव यानी ब्रह्म कल्प का एव निश्चय ही च भी अन्ते अंत के बाद जब ब्रह्म कल्प समाप्त होता है उसके बाद क्या होता है कल्प अभूत कल्प यानी कल्प अभूत यानी उत्पन्न हुआ यम जो पद्म पद्म अभिचक्षते कहलाता है उसको जो दूसरा होता है उसको पद्म पद्म कहते हैं यत जिसमें क्या होता है यत हरे नाभि सरस यत माना जिसमें हरे यानी भगवान हरि की नाभि मतलब नाभि से सरस अर्थात जलाशय से आसीत आसीत लोक सरोरुह आसीत माना था लोक माना ब्रह्मांड सरोरुह मतलब कमल उससे कमल लोक का ब्रह्मांड के अंदर जो सत्य लोक है वो स्टार्ट होता है पद्मलोक ये पद्म कल्प इसलिए कहते हैं उसको। अनुवाद देखिए प्रथम ब्रह्म कल्प के बाद का कल्प पद्म कल्प कहलाता है क्योंकि उस काल में विश्वरूप कमल का फूल भगवान हरि की नाभि रूपी जलाशय से प्रकट हुआ। श्रीला प्रभुपाद की श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रह्म कल्प के बाद का कल्प पद्म कल्प कहलाता है क्योंकि उस कल्प में विश्वरूपी कमल विकसित होता है। कुछ पुराणों में पद्म कल्प को पितृकल्प भी कहा जाता है। मैत्रेय मुनि कहते हैं अयम तु कथिता कल्पो द्वितीयस्यापि भारत वाराह इति विख्यातो यत् करो हरी अयम तो कथित कल्पो अयम मन यह तुर यानी लेकिन कथित मन प्रसिद्ध कल्पो यानी चालू या कल्प द्वितीयस्यापि भारत द्वितीयस्यापि यानी परार्ध का अपि निश्चय ही भारत हे भरतवंशी वारा इति विख्यातो वारा यानी वारा इति मन इस प्रकार विख्यात मतलब प्रसिद्ध है यत्रासी शु करो हरि यत्र जिसमें आसीत यानी प्रकट हुआ शुकर यानी सुकर के रूप में हरि यानी भगवान। अनुवाद देखिए हे भरतवंशी ब्रह्मा के जीवन के द्वितीयार्थ में प्रथम कल्प को वाराह कल्प भी कहलाता है क्योंकि उस कल्प में भगवान सुकर अवतार के रूप में प्रकट हुए। श्रील प्रभुपाद की श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रह्म चात्म तथा वाराह कल्प नामक विभिन्न कल्प अभिज्ञ व्यक्ति को कुछ चक्कर में डालने वाले लगते हैं। कुछ ऐसे विद्वान हैं जो इन कल्पों को एक ही मानते हैं। श्रील चक्रवर्ती ठाकुर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार ब्रह्म कल्प प्रारब्ध के आरंभ में पद्मकल्प जैसा प्रतीत होता है, किंतु हम तो मूल पाठ का पालन कर सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि वर्तमान कल्प ब्रह्मा की आयु की अवधि के द्वितीयार्ध में है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अभी जो समय चल रहा है वो ब्रह्मा जी का सेकंड मतलब द्वितीयार्ध मतलब सेकंड परार्ध स्टार्ट हो गया। सात मनु समाप्त हो गए, 50 साल समाप्त हो गए और अभी जो चल रहा है वो आगे का परार्ध चल रहा है। तो इस तरह से अलग अलग कल्पों के अलग अलग नाम है, किसी का ब्रह्म कल्प, किसी का वराह कल्प, किसी का पद्म कल्प, कुछ भी हो, श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं हमको मूल पाठ से जाना है और हमें ये मानना है कि ब्रह्मा जी का के जीवन की आयु आधी समाप्त हो गई है और आधे के बाद फिर प्रलय आएगा। लेकिन हमको तो इसीलिए प्रयास करना है कि बस यही जीवन जो है वो हमें इसी में हमें इतनी मेहनत करें कि हमको दोबारा जन्म मरण के चक्कर में ना फंसना पड़े बल्कि भगवत धाम की प्राप्ति हो। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे साथ रहिएगा और मुझे अवश्य प्रार्थना दीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूँ। हरे कृष्ण।